जहां मैं प्ले स्टेशन खोलता हूँ फिर दोबारा बंद करवा देती हैं कि अभी रमजान का महीना है बंद करो इसको. बच्चों को कहें वहां जितनी मर्जी गेम्स खेलना, और वहां गेम्स खेलने के बाद सर में दर्द भी नहीं होगा. अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और अब्दुल्ला इब्ने मसूद, इन दोनों ने सूरत यासीन की इस आयत में फी शुगलिन से मुराद ली है दैट दे विल बी बिजी विद देयर स्पाउसेस. अपना अपना माइंडसेट है ना. आप और मैं सोचें कि हम शॉपिंग कर रहे होंगे, आप और मैं सोचें कि अच्छा हम एक दूसरे के साथ फ्रेंड्स मिलकर हैंग आउट कर रहे होंगी, यहाँ पर तो शौहर और बच्चे जान नहीं छोड़ते, वहां हम इकट्ठे मिलकर जो है किसी रिजॉर्ट पर जो के उसके पहाड़ की टिप पर बना होगा बिल्कुल टॉप पर, हम वहां जाके जाके लंच और डिनर करेंगे. अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और अब्दुल्ला इब्ने मसूद कह रहे हैं कि फी शुगुलिन का मतलब है कि दे विल बी बिजी विद देयर स्पाउसेस. एक और मुफसर है मुजाहिद, उनका नाम आता है, वो कहते हैं कि इसके बहुत ब्रॉडर मीनिंग्स हैं और इसमें मुराद ये है कि जन्नत में इंसान एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएंगे. आपको मालूम है ना जन्नत में नींद नहीं है, मालूम है. वह मेरे जैसा बंदा कहता है मैं तो जन्नत में जाके बहुत सोऊंगी, इसलिए कि अल्लाह ने कहा है जन्नत में हर चीज मिलेगी. मगर ये कि अहादीस में ये पता चलता है कि जन्नत में लोग सोएंगे नहीं, आप रिलैक्स करने के लिए लेटेंगी, आप लीन करेंगी, आप जो है वो काउचेस पे बैठ जाएंगी, आप रिक्लाइनर्स पर बैठ जाएंगी, मगर जन्नत में ऐसी थकन नहीं होगी कि आपको नींद आ जाए. आप देखिए दुनिया का इम्तिहान, ऐसी थकन दुनिया में होती है जहां आपको नींद भी आती है और फिर अल्लाह ने कह दिया वक्त जाया भी ना करो, तो कैसा इम्तिहान है. फिर ऐसे ही इंसानों को अल्लाह ताला जो है वो इंशाल्लाह जन्नत में दाखिल करेंगे. इमाम तबरी की राय यह है कि ये वो लोग हैं जिनको जन्नत की एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी दी जाएगी और वो उसके अंदर फाकिहून की कैटेगरी में होंगे. ये वो लोग होंगे जिन्होंने दुनिया की जिंदगी में अपना कोई भी लम्हा अपनी तरफ से कोशिश करके जाया नहीं किया, जिन्होंने अल्लाह की खातिर कुर्बानियां दी, जिन्होंने अल्लाह की खातिर अपने आप के ऊपर मुश्किल डाली लेकिन अल्लाह के दीन को उठाने के लिए वो एक कांस्टेंट कोशिश के अंदर लगे रहे. तो मुख्तलिफ मुफस्सरीन की मुख्तलिफ राय हैं और इमाम तबरी ये भी कहते हैं कि उनका ये शुगल फी शुगल इन कांस्टेंट एक्टिविटीज की वजह से जो लोग इन लोगों को इन मोमिनीन को दुनिया में नुकसान पहुंचाया करते थे, इनको बहुत आसानी से वो लोग भी याद नहीं आएंगे जो इनको हर्ट करते थे. आएंगे कभी कभी याद आएंगे, इसलिए कि कुरान में आती हैं आयात जिसमें वो पूछेंगे कि हमारा वो साथी कहाँ है जो हमारे साथ हुआ करता था, और फिर उनको वहीं बैठे बैठे जहन्नुम का एक सीन दिखा दिया जाएगा और दिखाया जाएगा कि उनका वो साथी उस वक्त जहन्नुम में जल रहा होगा. अल्लाह ताला हमें जहन्नुम के अजाब से महफूज रखे. लेकिन इमाम तबरी कहते हैं कि इस फी शुगुलिन फाकिहून के अंदर यह मफहूम है कि मोमिनीन जिन लोगों से दुनिया में हर्ट होते थे, जो लोग मोमिनीन को दुनिया में परेशान करते थे, कयामत के दिन जब अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल कर देंगे तो वो इतने बिजी हो जाएंगे उनको याद भी नहीं आएगा. इसीलिए बाज़ मौकों पर यह भी कहा जाता है कि वो वालिदैन जो नेक थे अपनी तरफ से औलाद को सीधे रास्ते पर लाने की भरपूर कोशिश करते रहे और आखिरी सांस तक कोशिश करते रहे लेकिन औलाद नहीं मानी, तो अब अल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा कि अगर औलाद दोजख में चली गई, अल्लाह ताला सबकी औलादों को महफूज रखे, और माँ बाप जन्नत में चले गए तो माँ बाप तो ट्रॉमा में आ जाएं अगर वो हर वक्त औलाद के बारे में सोचते रहें. दुनिया इज नॉट लाइक, जन्नत इज नॉट लाइक दुनिया. आपके लिए इमाम तबरी कहते हैं कि माँ बाप को, नेक माँ बाप को नाफरमान औलाद भी उस शुगल में याद नहीं आएगी, इतना बिजी हो जाएंगे. तो औलादों के लिए सोचने का मकाम है एंड वाइस वर्सा. अगर औलादें जन्नत में पहुंच जाएंगी और माँ बाप नहीं पहुंच सकेंगे तो औलादों को जन्नत में जाने के बाद वो वालिदैन याद नहीं आएंगे, इसलिए कि वो तो खुद इतना बिजी होंगे. बाज़ औक़ात आपके साथ नहीं ऐसा होता, अगर आप शादीशुदा बेटी हैं और आपके पास ससुराली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, शौहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा हैं, आपकी कॉन्स्टेंट एक्टिविटीज हैं, तो कभी कभी अम्मा को फोन करते हुए दो दिन गुजर जाते हैं, तीन दिन गुजर जाते हैं, फिर आप शर्मिंदा होती हैं, फिर कहती हैं आज एक घंटा बैठ के अम्मी से बात करूंगी. ऐसा होता है ना, मसरूफियत में इंसान ओवरलुक कर जाता है. तो जन्नत में जो एक्टिविटीज दी जा रही हैं वो तो अल्लाह की तरफ से होंगी, उनमें इंसान कभी भी बोर नहीं होगा और इतनी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज होंगी कि जन्नती एक एक्टिविटी के बाद दूसरी के लिए इंतजार करेंगे. हमारी तरह थोड़ी एक एक्टिविटी करके जाते हैं, दर्श सुन के जाते हैं, तो बिस्तर पर ऐसा ढेर होते हैं कि हम कहते हैं या अल्लाह मुश्किल, बस इफ्तारी के टाइम उठा देना, नमाज पढ़ के सो रही हूँ. एक एक्टिविटी करके इतना थक जाते हैं ना, वेकेशन से आते हैं कितना थक जाते हैं आप सोचें. कहने को हम वेकेशन पर जाते हैं आराम करने के लिए, इंजॉय करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, मगर हम कहते हैं मैं वेकेशन से आई हुई हूँ, चार दिन कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज कोई मुझसे मिलने ना आए, मुझे कहीं जाने का ना. ये दुनिया की एक्टिविटीज का हाल है. जन्नत की एक्टिविटीज ऐसी नहीं होंगी, जन्नत के शुगल, हर शुगल आपको पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और एंथुजियास्टिक कर देगा। हर शुगल आपको और ज्यादा जो है वो एंटिसिपेशन में लेकर आएगा कि अब अगला शुगल कैसा होगा, अब अगली एक्टिविटी कैसी होगी। तो यहाँ पर शुगल में होंगे फाकी हून, किस तरह से खुश होने वाले होंगे, मैं बताती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ खुश होने वाले होंगे। असल में फाकी हून से लफ्ज बनता है फाकिहा, फल को कहते हैं फाकिहा, ऐसे फल को कहते हैं। कुरान में तो समर भी आता है, सा मीम रॉ, तो क्या फर्क है समर में और फाकिहा में? समर किसी भी फल के लिए आ जाता है, कोई भी आम सा फल। जब अल्लाह ताला फाकिहा का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो आप गौर कीजिएगा कि जन्नत की क्वालिटीज में इस लफ्ज की टर्म को लाया जाता है फाकिहातुन। फाकिहा वो फल होता है जिसको खाने के बाद उसका जायका इतना मजेदार होता है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। फाकिहा ऐसा फल जिसको खाने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए, यानी इतना मजे का। कुछ कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी यूं समझ लीजिए आपके हो सकता है कोई खाने होते हों जिसको खाने के बाद इट्स अमेजिंग के आई एम स्पीचलेस टू से एनीथिंग फॉर दैट खाना। इतना अमेजिंग फल, इतना मजेदार फल कि वो जिसकी अटर डिलाइट में और जिसकी अटर अमेजमेंट का शिकार हो जाएंगे। फाकिहून के अंदर दो अरबी के मफहूम छुपे हुए हैं, एक है फरीहून, फरीहून खुश होने वाले, और अजबून हैरत ज़दा होने वाले। क्या फल बनाया है, क्या अल्लाह ताला ने फल दिया है। तो इस चीज को यहाँ लाया गया है मुस्कुराहट के लिए कि कांस्टेंट जन्नती जो हैं। अब इसका मतलब है यहाँ पर आप जब इस लफ्ज को समझेंगी तो इसका मफहूम कोई लेने वाला ये भी ले सकता है कि मुख्तलिफ एक्टिविटीज में होंगे और साथ साथ फल भी खा रहे होंगे। बाज लोगों ने ये भी मफहूम लिया, इट्स ओके, जिनको फल खाने का शौक है वो ये कहेंगे, जिनको फल खाने का शौक नहीं है वो कहेंगे हेलो प्लीज, फल खाने की कोई लिमिट होती है? जिनको फल खाने का शौक नहीं है वो कहेंगे इन्ना असहाबल जन्नति अल्यौमि फी शुगुलिन फाकिहून। इसका मतलब क्या है कि जन्नतियों के चेहरों पर कांस्टेंट एक्टिविटीज होंगी और कांस्टेंट खुशियां होंगी, कांस्टेंट मुस्कुरा रहे होंगे। जब आपके बच्चे यहाँ नहीं मुस्कुराते आप उनसे कहें बेटा जन्नत में जाना है, वहां तो हर वक्त मुस्कुराना पड़ेगा, तो अभी से आदत डाल लो मुस्कुराने की। बाज लोग ना चाहते हुए भी अपने माथे के फ्रॉन्स खत्म नहीं कर पाते, इतने माथे पे फ्रॉन्स होते हैं कि वो परमानेंट लाइन्स आ जाती हैं, होते हैं ना बाज लोग ऐसे। उन लोगों को बताएं जन्नती जो होंगे ना उनके चेहरों पर सिर्फ मुस्कुराहट होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जन्नत का ग्लिम्स यहाँ नजर आ जाए तो मुस्कुराइए, मुस्कुराया करें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा कोई मुस्कुराता था? सहाबा कहते हैं कि हमने मदीना में आपसे ज्यादा मुस्कुराने वाला कोई नहीं देखा। तो ये दीन का इतना ड्राई कॉन्सेप्ट आसपास के लोगों को मत दीजिए कि जो दीनदार होते हैं वो मुस्कुरा नहीं सकते, सीरियस रहते हैं, तकवा होता है ना उनके अंदर। तकवे का मतलब ये नहीं है कि आप मुस्कुरा नहीं सकते, तकवे वाला इंसान अपने अमल से तकवे का इजहार करता है, अल्लाह की नाराजगी से बचते हुए तकवे का इजहार करता है, लोगों के हकूक अदा करते हुए तकवे का इजहार करता है। तकवे का मतलब यह नहीं होता कि आपको तकवे का हैजा हो जाए और उसके बाद आप मुस्कुराना छोड़ दें। मुस्कुराया कीजिए ताकि आपकी प्लेजेंट पर्सनैलिटी लोगों को दीन की खूबसूरती दिखाने का जरिया बने। अल्लाह से दुआ मांगा करें कि अल्लाह ताला आपने जितने लोगों को, खासतौर पर अपने खानदान वालों के लिए दुआ मांगा करें कि अल्लाह आपने मेरे खानदान में जितने लोगों को हिदायत देनी है, इसलिए कि तो अल्लाह को पता है ना अल्लाह ने किसको देनी है, आप और मैं तो नहीं जानते। दुआ क्या करें कि अल्लाह आपने जिसको हिदायत देनी है मुझे उस तक हिदायत पहुंचाने का जरिया बना दे ताकि मेरा हिस्सा डल जाए उसके अंदर, और जितनी देर तक वो इंसान या उसके असरात नेकी के बाकी रहेंगे उसका इम्पैक्ट किसको मिलेगा? मुझे मिलेगा, आपको मिलेगा। तो यही चीज है कि जन्नती कॉन्स्टेंटली मुस्कुरा रहे होंगे, यानी वो मोस्ट ऑफ द टाइम इंजॉयमेंट में भी होंगे और मोस्ट ऑफ द टाइम मुस्कुरा रहे होंगे। आप देखें दुनिया के मुकाबले में जन्नत ऐसी जगह है जहां इंसान खुलकर शुगल करेगा, खुलकर मुस्कुराएगा। हम अपने बच्चों को खुल के मुस्कुराने देते? आपका बच्चा है, बेटा है 4 साल का, बच्चे लड़के ज्यादा हाइपर होते हैं ना लड़कियों के मुकाबले में, आपका बेटा है 4 साल का और उसके साथ उसके कजन्स हैं, कोई 3 साल का भी है, कोई 6 साल का भी है, कोई 8 साल का भी है। अब आप में तो खोला है रोजा, तो आपकी तो इस वक्त एनर्जी ड्रेन्ड है बिल्कुल ही। आप वो बच्चों का तो रोजा नहीं था, 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, इफ्तारी तो उसने भी खाई है और आपने उसको चॉकलेट का केक भी खिला दिया है इफ्तारी में। अब वो हंस रहे हैं, बाद बच्चे हंसते हैं तो एक दूसरे की आवाज से ऊंची पिच ले जाने की कोशिश करते हैं, और अम्मा ने रोजा खोला हुआ है और अम्मा के सर में दर्द हो रहा है और बेचारा हंस रहा है, कह के लगा रहे हैं सब बच्चे, अम्मा की एक आवाज आती है अपने बच्चे को नाम लेके उसका, इंसान बनो। चलो बेचारे की सारी खुशी के ऊपर आपने जो है वो बिल्कुल फ्लैट फिजी ड्रिंक फेंक दी। ये बिल्कुल क्या चीज है कि दुनिया में बाज़ औक़ात आप खुलकर हंस नहीं पाते, जैसे माएं बच्चों को नहीं हंसने देती हैं, इसी तरह से हम बड़े भी बाज़ औक़ात आपको किसी चीज़ पर बहुत हंसी आ रही होती है, आप हंसते हैं, फिर आपको याद आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि बहुत कहकह लगा के नहीं हंसना चाहिए, तो फिर आप अपने आप को थाम लेते हैं कि अच्छा भाई मैं हंसूं लेकिन कंट्रोल अंदाज में हंसूं। फिर कभी कभी आप देखें कि कुरान के साथ जुड़ने की वजह से बहुत ज्यादा ऊंची आवाज में हंसते हुए इंसान बाज़ औक़ात डरने भी लग जाता है, हंसता है ऐसी बात नहीं है लेकिन डरने लग जाता है, इसलिए कि कहीं ये ना हो कि कोई मुझसे गलती हो जाए, कोई नजर लग जाए, कोई जो है वो मुझसे अल्लाह की नाफरमानी हो जाए। तो इंसान एक कांस्टेंट उसके अंदर होता है, इसलिए कि आप जब तज़किरतुन नफ्स की किताबें पढ़ते हैं तो उसमें वो कहते हैं स्कॉलर्स कि बहुत ठट्टे लगा लगा कर हंसना भी इंसान के नफ्स को कमजोर कर देता है, ये है। तो आप हर वक्त आप सोचते रहते हैं कहीं मुझसे इसराफ ना हो जाए हंसने का, तो इंसान कॉन्स्टेंटली कॉन्शियस रहता है। जन्नत में खुशी है, और जन्नत में आपके ऊपर कोई जो है ना वो हर वक्त का एक मेजरिंग स्टिक नहीं लटक रही होगी, आप ज्यादा हंस रही हैं या कम हंस रही हैं, आप थोड़ा हंस रही हैं या ज्यादा हंस रही हैं, जन्नत में लोग इंजॉय करेंगे और कॉन्स्टेंट इंजॉय करेंगे। तो ये जन्नत का एक बेहतरीन नक्शा यहाँ खींचा गया है, और अल्लाह ताला ने बता दिया कि जितने जन्नती नेमतों में इंजॉय करेंगे उतना ज्यादा उनका शुगल जो है वो उनको फायदा देगा और उनको एनर्जेटिक कर देगा। आप देखें यहाँ पर ये जो जन्नती हैं, क्या ये जन्नती जिस बेहतरीन इस वक्त नेमतों इनामात में है, क्या ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में कभी कभी भी कोई गुनाह नहीं किया था, क्या सिनलेस से? ये वो लोग थे सूरत यासीन की डेफिनेशन के मुताबिक जिनके नक्तुबु व आसई नाहू के अंदर गलतियां थी, गुनाह थे, लेकिन इन्होंने हर मरतबा गलती करने के बाद अल्लाह की तरफ अपने रुख को किया, हर मरतबा तौबा की, हर मरतबा माफी मांगी, और फिर अल्लाह ताला ने इनकी नेकियों की वजह से इन्होंने हर मरतबा कोशिश की कि मेरा आने वाला कल मेरे गुजरे हुए कल से बेहतर हो। दीन के एंगल से हम दुनिया के एंगल से कोशिश करते हैं कि मेरा आने वाला कल मेरी कल के दिन गुजरे हुए दिन के मुकाबले में बेहतर हो फ्रॉम दुनिया पॉइंट ऑफ व्यू। इस्लाम से कहता है हर मोमिन का आने वाला कल टुमारो उसके यस्टरडे से ईमानी लिहाज से बेहतर होता है। तो जो इस कोशिश में जिंदगियां गुजार देते हैं अल्लाह ताला उनका इजी ऑडिट करेगा, हिसाब आई यसीरा हुआ ना, गुनाह थे अकाउंट में, गुनाहों के आमाल थे, कहीं नियत करप्टेड थी, कहीं नियत में रिया थी, लेकिन क्योंकि कांस्टेंट अल्लाह के रास्ते पर चलने की टूटी फूटी कोशिश करते रहते थे तो अल्लाह ताला ने इनका हिसाब में यसीरा किया, इजी ऑडिट किया, और अल्लाह ताला ने इनके गुनाहों को ओवरलुक करके इनको जन्नत में भेज दिया। अल्लाह ताला नेक लोगों को जिनका आसान हिसाब लिया जाएगा अल्लाह उनका स्टेप बाय स्टेप लिस्ट बाय लिस्ट ईच अमल को नहीं चेक करेगा, उनका इजी ऑडिट होगा। ऐसा नहीं होगा कि खोलो फरिश्ते से कहा जाए इसकी किताब और निकालो पेज नंबर 30 और देखो पेज नंबर 30 पर क्या है, न्यूप्लेक्स क्या करने गई थी आप? अगर पेज नंबर 30 पे न्यूप्लेक्स की सामने जो है वो नखतबू की कैटेगरी में गवाही लिखी हुई होगी और फरिश्ते ने कह दिया अल्लाह ताला ये 30 मई को न्यूप्लेक्स पहुंची हुई थी, कोई जवाब दे सकेगा? अहदीस में आता है जिसके अमाल नामे पर हाथ रख के पूछ लिया गया बताओ ये गलती क्यों की थी, बस अब उसकी शामत। इसलिए कि अल्लाह को जवाब देने के लिए आपके और मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा, तो अल्लाह के रास्ते में दौड़ने की कोशिश करें। अगर आप चल रही हैं, अगर आप स्टेग्नेंट हैं तो चलें, वॉक कीजिए, अगर आप वॉक कर रही हैं तो ब्रिस्क वॉक कीजिए, अगर आपसे चला नहीं जाता तो क्रॉल कीजिए, और अगर आप वाकई इस वक्त चलने की कैटेगरी में हैं तो दौड़िए, फिर रू इल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ, ये वक्त है अल्लाह की तरफ दौड़ने का, और रमजान से बेहतर महीना अल्लाह की तरफ दौड़ने का कोई हो नहीं सकता। हमारे हाथ से बिल्कुल रेत की तरह निकल रहा है, अब अपनी रेत में मुट्ठी में रेत दबा के मुट्ठी में बंद कर लें, आप कितनी भी टाइट बंद करें रेत निकलती जाती है उसके अंदर से। रमजान के 15 दिन ऑलमोस्ट निकल गए, कल की बात लग रही है, पहला दिन था और हम सब यहाँ आके बैठे थे, कल की बात ही लग रही है ना। इसी तरह से 30 तारीख 29 तारीख भी आ जाएगी और पता नहीं चलेगा, अभी भी वी हैव टाइम, डोंट वेस्ट इट, जितना अल्लाह के रास्ते में दौड़ सकते हैं दौड़िए। आगे जन्नतियों की एक और नेमत का जिक्र आ रहा है, आयत नंबर 56, हुम व अज़वाजुहुम फी ज़िलालिन अलल अराइक मुत्तकीउन, वो और उनके स्पाउसेस फी ज़िलालिन सायों में शेड्स में कैनोपीज में अलल अराइक कंफर्टेबल बेड्स के ऊपर काउचेस के ऊपर मुत्तकीउन तकिया लगाकर बैठे होंगे, टेक लगाकर बैठे होंगे, वो और उनके स्पाउसेस छाओं में, शेड्स में, काउचेस पर टेक लगाकर बैठे होंगे. ज़िलाल, ज़ौ लाम लाम से ये जो आया है ये जमा है ज़िल्लुन की. ज़िल्लुन कहते हैं शेड को, कैनोपी को. और अराइक की जो आया है वो अरीका की जमा है. अरीका, हमजा रा या काफ हा. अरीका कहते हैं एक समझ लीजिए काउच जिसके ऊपर कैनोपी लगी हुई हो और उसमें से ड्रेप करा हो पर्दा. लग्जरी, विक्टोरियन स्टाइल फर्नीचर, दिमाग में आता है ना, एक लग्जरी की अलामत है. तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल यही कहा जिसको आप ओल्ड स्कूल फर्नीचर कहते हैं. ओल्ड स्कूल फर्नीचर की, जी हाँ, वो माइनिंग्स भी आते हैं. बिल्कुल बिल्कुल सही पढ़ा था आपने. दुल्हन की सेज में ही वो ड्रेप करते हुए कर्टन्स या फ्लावर्स लगाए जाते हैं ना. बिल्कुल सही बताया आपने. तो अल्लाह ताला ने ये बताने की कोशिश की है कि जो जन्नती होंगे ये अपने अजवाज के साथ. और जब अल्लाह ताला कह रहा है जन्नत में अजवाज और स्पाउस, तो अल्लाह हमारे मुसलमानों को और अल्लाह हम इंसानों को हिदायत दे और अल्लाह हमारे बच्चों की हिफाजत करे. अजवाज सिर्फ मर्द और औरत का होता है. मर्द मर्द जौज नहीं होता, औरत जौज नहीं होती है. देर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अमंग द सोसाइटी, अमंग द वर्ल्ड राइट नाउ. अल्लाह ताला हमारे बच्चों की हिफाजत करे और अल्लाह हमारे बच्चों को इस गुनाह से दूर रखे. अजवाज की बात आ रही है कि वो अपने स्पाउसेस के साथ इन बेड्स के ऊपर कर्टन्स के अंदर ड्रेप करते हुए कर्टन्स के अंदर चिल कर रहे होंगे. रिलैक्सेशन की तस्वीर है. जन्नती इंजॉयमेंट प्लस रिलैक्सेशन, दोनों की तस्वीर है. पहले बताया था कि जन्नती बिजी कैसे होंगे. शुगल, पहले दिन भर में तो एक्टिविटीज हो रही हैं, अब उसके बाद अब क्या हो रहा है, अब रिलैक्सेशन हो रही है. और आपको पहले ही बता दिया रिलैक्सेशन में थकेंगे तो नहीं जन्नती. जन्नत का जिस्म थकेगा नहीं. जन्नत के जिस्म के अंदर किसी किस्म की थकान, ऊंघ, नींद नहीं है. तो जन्नती जब बहुत सी एक्टिविटीज सारा दिन कर लेंगे फिर शाम में आके अपने काउचेस के ऊपर अपने अजवाज के साथ अब रिलैक्स करेंगे. अब ये रिलैक्सेशन हो रही है. सोएंगे नहीं, मैंने आपको बता दिया नींद नहीं है वहां पे. जैसे पहले कि मैं इस पर बात करूं, मैं अगली आयत भी पढ़ लेती हूँ. आयत नंबर 57, लाहुम फीहा फाकिहातुन वलाहुम मा यद्दाउन. वहां उनके लिए फाकिहा फल होंगे और वहां वो कुछ होगा उनके लिए जो भी वो तलब करेंगे. अब यहां पर जो फाकिहा आया है ये फलों की शक्ल में आया है. तो ये दोनों आयतें अपने जहन में रखिएगा, फिर हम इन दोनों पर बात करते हैं. इब्ने आशूर के मुताबिक, इब्ने अबू आशूर मुफस्सिर कुरान है और वो अपनी तफसीर में लिखते हैं कि ये जो यहाँ पर पोस्चर आया है अलल अरा इकी मुत्ताकी ऊन, ये पोस्चर है जिसमें ना आप बैठे होते हैं ना आप लेटे होते हैं. जैसे आप अपने सर के नीचे हाथ रख के यूं करके नहीं टेक लगा के अपने एक पहलू के ऊपर बिस्तर पर लेट जाते हैं, रिलैक्सिंग पोजिशन. ये वो अंदाज, रिलैक्स मोड है जिसको यहाँ पर इब्ने आशूर के मुताबिक जो है वो डिपिक्ट किया गया है. बिल्कुल रिलैक्स कर रहे होंगे, चिल कर रहे होंगे. आप आखिरी दफा सोचें आप इस तरह कब बैठी थी, अब तो शायद मौका ही नहीं मिला होगा आपको आखिरी दफा ऐसे बैठने. आज जाके ऐसे बिस्तर पे बैठिएगा और फिर अल्लाह से दुआ कीजिएगा, अल्लाह बिल्कुल ऐसे ही मुझे जन्नत में भी बिस्तर पे बिठाइएगा. तो कुरान में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ नेमतों का असल में जिक्र जो है वो इन दो आयात के अंदर किया है. जहां तक बात आई हम व अजवाज हम, उनके लिए जौज होंगे. और हम देखते हैं कि कुरान में जब ये लफ्ज आता है हम व अजवाज हम, तो ये सिर्फ ये बात नहीं है कि मर्दों के लिए उनकी बीवियां या उनके लिए हूरें होंगी. हूरें अलग होंगी, बीवियां अलग होंगी. एंड देर इज नो पॉइंट ऑफ जेलसी एट ऑल इन जन्नत. तो प्लीज भूल जाएं जेलसी. हमें यहां हो सकती है कि मेरा शोहर क्या मैं दूसरी शादी कर रहा हूं. बाद शोहर सिर्फ बीवी को तंग करने के लिए कहते हैं अगर तुम्हारे जैसी एक और मिल जाए तो शायद सोच सकता हूँ. फिर आगे कहते हैं हाँ मुझे पता है नहीं मिलेगी, तो वो शौक में पूरा करते हैं ना. आप कितना भी आपके हस्बैंड नाराज हो आप दूसरी शादी का नाम लें, फिर देखें कैसे उनका ग्रॉम्पी फेस स्माइली फेस में कन्वर्ट हो जाता है ना. तो मर्दों के अंदर अल्लाह ने ये खास अर्ज रखी है. तो जब अल्लाह ताला अजवाज का जिक्र जन्नत के हवाले से करते हैं तो ये मत सोचा करें कि सिर्फ वहां मर्दों के लिए उनकी बीवियों या उनकी हूरों की बात हो रही है. अजवाज की बात हो रही है तो मर्दों के लिए उनके जो स्पाउसेज हैं बीवी की शक्ल में, और औरतों के लिए जो उनके स्पाउसेस होंगे शौहरों की शक्ल में अगर औरतें चाहेंगी. आपको ये बात मालूम है ना, बहुत सी औरतें नहीं चाहती हैं. नहीं मालूम आपको? अच्छा अभी बताती हूँ. बहरहाल एक बात की तसल्ली रखिए, बाज़ ख़वातीन बहुत नाराज होती हैं और बाज़ इतनी नाराज होती हैं वो कहती हैं कि हाँ हर दफा अल्लाह ताला जन्नत के अंदर डिलेड ग्रेटिफिकेशन की भी बात करते हैं तो मर्दों के हवाले से करते हैं, औरतों को तो घास ही नहीं डालता कोई. मर्दों के लिए हूरे होंगी तो औरतों के लिए क्या होगा. एक बात की तसल्ली और यकीन मुसलमान औरत के अंदर होना चाहिए اور جتنا یہ مسلمان عورت ایک مسلمان عورت کے اندر یہ یقین ہوگا یہ اتنا فلٹر ڈاؤن کرے گا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے الا یعلم من خلق, کیا اللہ نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ اللہ آپ کی اور میری ڈیزائرز نہیں جانتا, اللہ آپ کی اور میری فطرت نہیں جانتا, اللہ میری اور آپ کی انکلینیشنز نہیں جانتا, وہ جس نے مرد اور عورت کو بنایا وہ سب جانتا ہے. تو جنت کے لیے آپ قرآن میں جو بھی پڑھتی ہیں اگر آپ کو کمی لگتی ہے تو یہ قرآن کی کمی نہیں ہے, یہ میری عقل کی کمی ہے, پہلے تو اس کو مانیں. اور قرآن کی ایک اور آیت کو جب بھی آپ کو جنت کے حوالے سے اپنے ریوارڈ میں مردوں کے مقابلے میں کمی نظر آئے, سورہ فصلت کی آیت نمبر 31 نکال نکال کر پڑھا کریں, بلکہ آپ اس کا وظیفہ کیا کریں. آپ کو وظیفہ کرنا ہے نا, بہت شوق ہے, آپ اس آیت کا وظیفہ کیجئے تاکہ آپ کو جنت کے شوق میں دنیا میں اپنے آپ کو روکنا آ جائے, ٹیمپٹیشنز کے اوپر, گناہوں کے اوپر, اللہ کی نافرمانی کے اوپر. سورہ فصلت کی آیت نمبر 31 میں آتا ہے وَلَكُمْ اور تم سب کے لیے فیہا اس جنت میں مَا تَشْتَحِ أَنفُسُكُمْ ہر وہ چیز ہوگی جس کی خواہش تمہارے نفس کریں گے. جس چیز کا آپ کو خیال آ رہا ہے وہ بھی آپ کو جنت میں ملے گا, اور جس چیز کا آپ کو خیال نہیں آ رہا یاد رکھیں وہ بھی جنت میں آپ کو دیا جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ اور تم جو آرڈر کرو گے وہ جنت میں تمہارے سامنے آ جائے گا. تو جنت آپ کے لیے کسٹم میڈ ہوگی, ہم میں سے ہر ایک کی جنت اپنے اپنے حساب سے ہوگی, ایسے نہیں را مٹیریل کی طرح سب جنت کے لیول نکلے آ رہے ہیں. اللہ بس ہمیں اس جنت کے قابل کر دیں. کبھی کبھی اتنی شیورٹی سے جنت کے بارے میں بولتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اچھا بڑا آپ کو یقین ہے آپ جنت میں پہنچ جائیں گے, پھر آپ کہتے ہیں نہیں نہیں یقین نہیں ہے, بین الخوف والرجا, ہم تو صرف امید اور خوف کے درمیان میں اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں. آپ جو طلب کریں گے جنت کے اندر انشاءاللہ آپ کو دیا جائے گا. تو اب ہمیشہ اپنے آپ کو اس اینگل پہ رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہاں ایسے انعام تیار کیے ہیں کہ آپ خوش ہو جائیں گے. کیا کوئی دنیا میں آپ کو خوش کرے گا آپ سے محبت کرنے والا جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کریں گے؟ جنت کو ایک تو یہ کہ جنت کے لیے آتا ہے کہ انسان یہ جو ہے نا ماں تشتہی انفسکم, جو تمہارے نفس خواہش کریں گے. اسکالرز کہتے ہیں دو طرح کی خواہشات پوری کی جائیں گی سب سے پہلے جنتیوں کے, ایک وہ خواہشات جو جنت کو ایک دم سے دیکھتے ساتھ ان کے دل میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ فوراً دیر اینڈ دین پوری کرے گا. اس کے بعد ان خواہشات کو پورا کیا جائے گا جو خواہشات ان مومنین کی دنیا میں تھیں لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانے کے لیے دنیا میں خود کو ہولڈ بیک کیا. اس لیے کہ جو خواہش تھی دنیا میں وہ حرام تھا تو نہیں کر سکتے تھے, تو اپنے آپ کو صرف اللہ کی خاطر روکا. مفسرین کہتے ہیں بعض انسان اپنی ان بہت سی خواہشات کو جو دنیا میں انہوں نے اللہ کی خاطر روکی تھیں بھول گیا ہوگا, اللہ یاد کرا دے گا دیکھو تم نے دنیا میں وہ خواہش کی تھی نا, اب میں تمہاری خواہش پوری کرتا ہوں. اور ایک چیز کا اور بھی آپ اپنے آپ کو یقین دلا دیں اور اپنے بچوں کو بتائیں, جنت میں کوئی چیز حرام نہیں ہے, نتھنگ از حرام ان جنت. یہ دنیا کے ریسٹرکشنز ہیں, جو یہاں ان ریسٹرکشنز کو اٹھا لے گا آگے وہ دنیا اس کے لیے تیار کی گئی ہے جس کے اندر کوئی بھی چیز حرام نہیں ہوگی. آپ جو مانگیں گی وہ مل جائے گا. اب آپ یہ جو کی ڈیفینیشن میں جو آپ کے ذہن میں یہ آیا نا ماں تشتاہی, اس ماں کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے. ہم میں نے آپ کو بتایا تھا ماں غیر عاقل کے لیے آتا ہے, اینی تھنگ جو بھی آپ کے لیے دماغ میں چیز آتی ہے, چاہے آپ یہاں سوچتی ہیں تو آپ کے دماغ میں اس کے بعد اگلا لفظ جو آتا ہے جو خواہش آتی ہے آپ کہتی ہیں استغفر اللہ یہ میں کیا سوچ رہی ہوں. جنت میں آپ جو مانگیں گی اللہ پوری کرے گا, اس لیے کسی کی جنت دوسرا جھانک جھانک کے نہیں دیکھ رہا ہوگا, آپ کی جنت آپ کی, میری جنت میری, صحیح. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس جنت کے قابل کر دے. تو انسانوں کے امیجنیشن کو اسٹرانگ کیا جا رہا ہے. جہاں تک مردوں کے لیے حوروں کی بات ہے, دیکھیں آپ میں سے جن کے بیٹے ہیں, جو آپ میں سے شوہروں والی ہیں, جو آپ میں سے بھائی رکھتی ہیں, آپ سب کو اندازہ ہوگا کہ مرد کی سوچ عورت کے مقابلے میں زمین آسمان کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے. آپ نے کبھی ایسے, اٹس ناٹ اے گڈ انالوجی لیکن سمجھانے کے لیے, آپ نے کبھی ایسے گھوڑے کو دیکھا ہے جس کے دونوں طرف پروٹیکٹر لگے ہوتے ہیں, وہ آنکھوں کے پاس لگا دیتے ہیں, دیکھیں کیوں لگاتے ہیں؟ ہاں تاکہ وہ اپنے دائیں بائیں نہ دیکھ سکے اور اپنے راستے پر فوکس رہے, جہاں مالک لے کر جانا چاہ رہا ہے بس وہ وہاں چلتا رہے. اٹس ناٹ اے نائس انالوجی لیکن صرف سمجھانے کے لیے. اٹس آلموسٹ لائک اللہ تعالیٰ نے مردوں کو خواہشات کے پوائنٹ آف ویو سے وہ پروٹیکٹرز لگا کے دیے ہیں اور ایک سامنے خواہشات کا فریم دے دیا ہے. اگر آپ قرآن پڑھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی خواہشات کو لسٹ ڈاؤن نہیں کیا ہے قرآن میں, مردوں کی خواہشات کو لسٹ ڈاؤن کیا ہے. اور وہ آپ کو خواہشات سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں ملتی ہیں. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ, ہے تو لوگوں کے لیے خواہشات, جنرلی اس میں سے عورتوں کی بھی ہوں گی, لیکن جو پہلی خواہش آئی ہے شہوات کے بعد, مِنَ النِّسَا, تو اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کہہ سکتے نا نعوذ باللہ کہ عورت کو عورت کی طرف کوئی خواہش آ رہی ہے, وہ تو حرام کی کیٹیگری ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ جو آیت 14 سورت آل عمران میں خواہشات کے لیے لسٹ ڈاؤن چیزیں کی گئی ہیں, یہ کس کی ہیں؟ اسپیسیفکلی مردوں کی ہیں. عورتوں کی تو یہ بھی ہوتی ہیں اور ایک اور لمبی کتاب ہوتی ہے لسٹ کی. ہماری چھوٹی چھوٹی لسٹ تھوڑی لسٹ ہوتی ہیں, ہماری تو لمبی لسٹ ہوتی ہیں. آپ کے ہسبینڈ کہتے ہیں چلو میں تمہیں ایک گھنٹے کے لیے شاپنگ مال لے جا سکتا ہوں, آپ کہتے ہیں ایک گھنٹہ کم ہے, آپ جائیں میں چلی جاؤں گی. عورتوں کی خواہشات کی لسٹ بہت لمبی ہوتی ہے. تو اس صورت کے اندر صورت آل عمران میں مردوں کی خواہش آئی, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ وَالْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. یہ مردوں کی پوری ایک لسٹ آپ کو مل رہی ہے. مردوں کے لیے عورتوں سے چاہت کی خواہش اللہ نے ان کی فطرت میں ایمبیڈڈ کی ہے. جبھی تو کہا ہے کہ اپنے اس خواہش کو صرف نکاح کے دائرے میں پورا کرو. اسی لیے مسلم کمیونٹی سے کہا ہے کہ نکاح جتنی جلدی کیا جا سکتے ہیں کر دیں. اگر آپ کا بیٹا 18 سال کا ہے اور وہ منہ سے آ کے آپ کو بول رہا ہے مجھے شادی کرنی ہے, آپ کہیں گے شٹ اپ, پہلے بیچلرز کمپلیٹ کرو. خدا کا واسطہ یہ مت کریں. اگر آپ کا بچہ 18 سال کا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے شادی کرنی ہے اور آپ سمجھ رہی ہیں کہ سمجھدار ہے, ایک ہوتا ہے نا بچے بہت معصوم بچپنا ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے, بعض بچے ہوتے ہیں 18 سال کی عمر میں بہت میچور ہوتے ہیں, سمجھدار ہوتے ہیں, چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. باپ کو اللہ تعالیٰ نے فائنینشلی اسٹرانگ کیا ہے, آپ فیملی وائز اسٹرانگ ہیں, اور بچہ خود منہ سے کہہ رہا ہے میری شادی کر دیں, اب اس کے بیچلر کا انتظار مت کریں, کر دیں اس کا نکاح اس سے پہلے کہ وہ کہیں کسی جگہ حرام میں منہ مار لے. بچے بچے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, بعض بچوں میں ہوتا ہے. تو مردوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے چاہت کا معاملہ بلٹ ان رکھا ہے. آپ کو اور مجھے سامنے چلتی ہوئی عورت نظر آ رہی ہوتی ہے, اور اگر کوئی مرد کسی عورت کو دیکھتا ہے اور خوبصورت عورت کو دیکھتا ہے تو لٹرلی شیطان اس کو ایک آبجیکٹ بنا کر دکھاتا ہے, انٹل انلیس کہ وہ متقی مرد ہے. دس از دا سمپل ایکویشن. اگر ایک عام مرد ہے جو شیطان کی باتوں میں آرام سے آ جاتا ہے, تقویٰ نہیں ہے اس کے اندر, اخلاق نہیں ہے اس کے اندر, تو اس کو عورت ایک آبجیکٹ کے طور پر نظر آتی ہے. اور آج کے زمانے میں تو عورت کو آبجیکٹیفائی کر دیا گیا ہے, عورت آبجیکٹ کے طور پر ہی نظر آتی ہے. تو اگر آپ کا بیٹا خواہش کرتا ہے تو اس کا نکاح کریں. اسی طرح سے مردوں کی دوسری جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خواہش کا اظہار کیا, ایک خاص عمر کے اندر اولاد کی خواہش, اور وہ بھی خاص طور پر بیٹوں کی خواہش. پھر تیسری چیز انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے آئی ہے, القناطیر المقنطرہ. مردوں کے اندر آپ دیکھیں 30 سال 35 سال کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کا ایک دم سے جو ہے وہ کلائمیکس آتا ہے. سو انویسٹمنٹ کو سیونگس کو مینشن کیا گیا ہے, گولڈ اور سلور کو مینشن کیا گیا ہے, اور جو گھوڑے آئے الخیل, گھوڑوں کے پوائنٹ آف ویو سے آج مردوں کی کیا زیادہ خواہشات ہوتے ہیں؟ گاڑیاں. ایک نو کم سے کم دو تو ہوں, تین تو ہوں کم سے کم, اور گاڑی بھی سب سے اچھی والی ہو, آڈی ہو کہ بی ایم ڈبلیو, ٹویوٹا ہونڈا تو میں عام جگہوں پر لے کر جاتا ہوں, باقی جہاں میری خاص جگہوں پہ جانے کے لیے بڑی والی گاڑی ہو. انعام, انعام کو آج کے ریفرنس میں آپ انویسٹمنٹ سمجھ سکتی ہیں. اور الحرث, کھیتی, آج کے مردوں کے لیے کھیتی کیا ہے؟ وہ جو ہر سال ان کو بونس ملتا ہے. الحرث از قرآن کی آیات, زندہ آیات ہیں. قرآن کی آیات جیسے 1450 سال پہلے کے مردوں کی خواہشات کو بتاتی تھیں, یہ الحرث اور الانعام کے اندر آج کے مردوں کی خواہشات بھی بتائی جا رہی ہیں. یہ وہ خواہشات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے سٹریم لائن کر دی ہیں. آپ ایک زندگی مرد کی فوکس میں اگر لے کر آئیں گی تو ایک مرد کی زندگی ان خواہشات کے پیچھے دوڑتی ہے, ایز کمپیئر ٹو عورتیں. عورتیں بہت ورائٹی رکھتی ہیں خواہشات کے اندر. آپ آج کل بہت سی بچیوں کو دیکھ رہی ہوں گی, اس کی بہت سی اور وجوہات ہیں, بٹ کیپنگ یور سیلف آؤٹ فرام دا نیگیٹو ایسپیکٹ آف دا سوسائٹی. بہت سی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جن کو بہت زیادہ شادیوں کا شوق نہیں ہوتا, بس ان کو زندگی میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے, کوئی بڑا کام کرنا ہے مجھے, بس مجھے کسی انسان کی مدد کرنی ہے, مجھے کسی یتیم خانے کو اڈاپٹ کرنا ہے, مجھے کسی اسکول کو اڈاپٹ کرنا ہے. میری خواہشات کوئی ایک نہیں ہے, میری خواہشات بہت ساری ہیں. آپ بھی اپنے بچوں کی دیکھتے ہوں گے, مجھے بھی یاد ہے جب میری بیٹیاں چھوٹی تھیں تو ان کی ہمیشہ سے ایک ڈائری, ان کی وش لسٹ کے حساب سے ایک اپنی اپنی ڈائری ہوتی تھی, اور وش لسٹ میں کوئی 1, 2, 10, 20 وش لسٹ نہیں ہوتی تھیں, وہ پوری ڈائری وش لسٹ سے بھری ہوتی تھی, اور اگر 4 چیزیں ملتی تھیں تو 12 ایڈ کر دیتی تھیں اس کے اندر. اماں کہتی تھیں یا اللہ یہ کبھی ختم بھی ہوگی وش لسٹ, अभी भी आप देखें, आप में से जिनकी छोटी बच्चियां हैं, बड़ी बच्चियां के अपने तरीके होते हैं, छोटी बच्चियां लड़कियां एक अपनी हर वक्त विश लिस्ट बनाकर रखती हैं, इसलिए कि उनकी वैरायटी बहुत ज्यादा है ख्वाहिशात की। तो अल्लाह ताला ने औरतों के इंक्लिनेशन को और औरत की फितरत को देखते हुए औरत के लिए बहुत ब्रॉड जन्नत का कॉन्सेप्ट रखा है। इट्स अ सरप्राइज। जन्नत में क्या है? आपको सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं? औरतों को सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे लग रहा है आप लोगों को अच्छे नहीं लगते ज्यादा। मुझे तो सरप्राइजेस बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, अभी वो अलग बात है, आप कहें मुझे सरप्राइज मेहमान नहीं अच्छे लगते। मैं मेहमान की बात नहीं कर रही, मैं सरप्राइजेस की बात कर रही हूँ जो तोहफे की शक्ल में मिलते हैं। औरतों को सरप्राइजेस अच्छे लगते हैं, तो अल्लाह ताला ने औरत की फितरत को देखते हुए उनके लिए जन्नत में बहुत से सरप्राइजेस रखे हैं। और उसके बाद यहाँ पर जो आयत आई थी, आयत नंबर 57, लाहुम फीहा फाकिहतुन वलहुमा यद्दउन, अल्लाह ने उनके लिए वहां पर हर तरह के फल रखे हैं और वो जो चाहेंगे उनको वैसे ही फल वहां पर दिए जाएंगे। एक चीज और मैं बताऊँ, सूरह शूरा की आयत आती है, शूरा शीन वाओ रा या अलिफ मकसूरा के साथ, शुरा ने शूरा, सूरह शूरा की आयत नंबर 40 में आता है, अल्लाह ताला ने बाज आमाल का रिवॉर्ड बताया नहीं है। जैसे रोजे का रिवॉर्ड क्या है? असौमुली व अना अजजी बिही,